भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमयूण जिनम वीरम अनंतवर्णान दंशन सहावम वोच्छामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम।
अभी हम सभी ने नेमसार जी परमागम शास्त्र की गाथा नंबर 49 पर पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत ही मार्मिक मंगलमय प्रवचन सुना। एक घंटे के प्रवचन में गाथा का विषय तो स्पष्ट हुआ ही, लेकिन अपन लोगों को प्रेरणा की कितनी बातें गुरुदेव ने कही। जन्म मरण का अंत लाना हो तो ये बात है, और इस अवसर में यदि कार्य नहीं किया तो भव भटक चालू रहेगी, है ना। कैसे कैसे मार्मिक दृष्टांत दे दे करके अपने को संबोधन किया है कि भैया जो एक एक क्षण अपना जा रहा है, एक एक क्षण, वो एक एक क्षण मृत्यु के समीप जा रहा है। अपन लोग क्या समझते हैं कि मैं बड़ा हो रहा हूं। मां भी कहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि मृत्यु के जितने माने मृत्यु का जो समय है वो तो बदलने वाला नहीं, और जितना काल बीत रहा है तो अपन मृत्यु के समीप जा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे उदाहरण देकर के कितने करुणा भाव से कि यहां पर तू करोड़ों पति अरबों पति हो और अगले क्षण मर करके कौन सी पर्याय धारण कर ले। वे आता है ना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, नहीं आता ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से ज्यादा बारहवें संयोग किसके पास हो सकते हैं। मनुष्यों का राजा, मनुष्यों का इंद्र कहलाता है, और एकमात्र आत्म स्वभाव की विराधना और अपनी पत्नी यानी रानी के मोह में मर करके अगले क्षण सातवें नरक का नारकी हो गया। ये संसार की विचित्रता का स्वरूप है। स्वभाव ऐसा महान कि पर्याय में चार भाव होने पर भी औदयिक, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक जैसे चार भाव होने पर भी, संसारी जीवों के ये चार भाव होने पर भी स्वभाव देखा जाए तो स्वभाव कैसा कि वो स्वभाव सिद्ध भगवान जैसा आया, सिद्ध से किसी तरह कम नहीं, बोलो। और ऐसे स्वभाव की महिमा नहीं आवे, अरे और की बात तो छोड़ो, इन संयोगों की बात छोड़ो, धूल मिट्टी की बात तो छोड़ो, यहां तो कहते हैं कि ऐसे स्वभाव की महिमा छूट करके तुझे एक समय के छायिक भाव की भी महिमा आवे क्या, तो भी समझना अपनी होनहार क्या है। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन भी नहीं है, ये गुरुदेव ने कहा था। यथाख्यात चारित्र की पर्याय प्रकट हो कि वो भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय तो एकमात्र परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो शुद्धात्मा है कि वो सम्यक दर्शन का विषय है। एक बात आई थी, रजकण तारा रखड़ से जैम रखड़ती रेत, पछी नर्तन पामिश क्या चेत चेत नर चेत। कितनी गजब की बात कही थी कि ये तेरे शरीर के रजकण ऐसे भटकेंगे, कैसे भटकेंगे, शमशान में जाएगा ना, तो शमशान में जाएगा, अभी अपनी यहां से देह परिवर्तन हो जाए, कितने घंटे रखने वाले अपने को अपने घर वाले, बहुत किया अपन लोगों ने, घर वालों के लिए बहुत किया, सबके लिए बहुत किया, है ना, और शरीर भी सुंदर हो, रूपवान हो, है ना। तो भी ये घर वाले कितने टाइम रखेंगे कि समझ लो 12 एक बजे अगर दिन की 12 एक दो बजे भी अगर देह परिवर्तन हुआ ना, तो शाम का सूर्य उदय होने से पहले पहले झंझट काट देंगे, नहीं है? हाँ, तो वो कह रहे गुरुदेव उसका उदाहरण देंगे कि रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, आंधी चले और आंधी में जैसे रेत उड़ती है ऐसे तेरे शरीर के रजकण उड़ जाएंगे, कोई धुआं बन करके उड़ जाएगा, कोई भाप बन करके उड़ जाएगा, रहा सहा वो राख बन करके रह जाएगा, है ना। क्या कहा उसमें, कह करके क्या कहना चाहते हैं कि पक्षी नर्तन पामी शिक्या। देखो भाई 2000 सागर की त्रस पर्याय की काल होती है, 2000 सागर से ज्यादा नहीं होता, और ये उत्कृष्ट काल है। उत्कृष्ट काल का मतलब समझे कि अधिकतम अगर दो अगर लगातार अधिकतम हम रहें तो 2000 सागर से अधिक त्रस पर्याय भी नहीं रह सकते। वो त्रस पर्याय में दो इंद्री के भव, तीन इंद्री के भव, चार इंद्री के भव, असंगी पंचेंद्री के भव तो किसी काम के नहीं, बराबर। अभी संगी पंचेंद्री पना अपने को मिला और संगी पंचेंद्री पने में नार की मार काट में दुखी, त्रियंच उसकी स्थिति अपने से छिपी नहीं है, बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देवता लोग विषय कसायों के भोग, मतलब विषय कसाय की परिणति से दुखी, वो भोग भोगने के चक्कर में लगे रहते हैं। मनुष्य देह मिला और मनुष्य देह में यदि तीव्र कसाई के परिणाम में जीवन चलता रहा तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, वो पाप के पुरुषार्थ में लगा रहता है। कसाई की मंदता कदाचित हुई और कसाई की मंदता में भी फिसलने के स्थान बहुत हैं, है ना। ये लोक सेवा का जो रस है ना, तो ये भी एक कसाई की मंदता का प्रकार है। तो कसाई की मंदता के ऐसे अनेक प्रकार कि जिसमें सारी दुनिया इसे मतलब मान बढ़ाई देगी और उस मान बढ़ाई में ये फसल जाएगा, लेकिन इस कसाई की मंदता में तत्व सुन करके, तत्व को समझ करके, तत्व के तत्व आत्म स्वभाव में परिणमन करने का जो एक अवसर अपने को मिला था, वो अवसर भी यदि हमने गंवा दिया तो अब नरभव कहां मिलेगा। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मंद कसाई सहित विषय कसाय आदि के कार्य में प्रवर्ते या व्यवहार धर्म के कार्य में प्रवर्ते। क्या दो बातें ली, तीव्र कसाई की तीव्रता होगी जब तो मंदिर ही नहीं आएगा, और कसाई की मंदता हुई तो दो बातें, या तो मंद रागादि सहित विषय कसाई के कार्य में प्रवर्ते, भाई अपन तो शुद्ध भोजन करते हैं, अपन तो भगवान की 2 घंटे पूजा करते हैं, अपन तो 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं, अपन तो सब काम परोपकार के ये सब करते हैं, यानी इस तरह मंद कसाय सहित विषय कसाय के कार्य में प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्ते। पंडित टोडरमल जी ने लिखा अवसर तो चला जाएगा, संसार में ही भ्रमण होगा। ये शब्द ये अपने को चेतावनी दी है, है ना। ये देखो महाभाग्य से ऐसा परमागम, कुंद कुंद आचार्य देव की समर्थ आचार्य देव की वाणी अपने को मिली। गुरुदेव तो बहुत महिमा गाते हैं ना कि आज समय सार जैसे परमागम, नियम सार जैसे परमागम, मूल गाथा और उसकी टीका सहित अपने को उपलब्ध हो गए, ये भी हमारा महाभाग्य है। नहीं तो भाई साहब ऐसा अवसर भी आया था कि 6-6 महीने तक जैन शास्त्रों की अनवरत होलियां जलाई गई थी। आप सोचो कि ये जिनवाणी जितनी बच गई अपने भाग्य से, कि ये कौन सा भाग्य अपना बाकी था। और ये जिनवाणी बच गई वो तो ठीक, लेकिन ये समय सार आदि परमागम गुरुदेव श्री जैसे महाप्रतापी पुरुष को नहीं मिले होते तो समय सार तो होता, नियम सार तो होता, लेकिन नियम सार के रहस्यों को कौन जान पाते हैं। कुंद कुंद आचार्य के लिए
जैसे देवसेन आचार्य ने कहा कि यदि पद्मनंदी नाथ कुंद कुंदाचार्य देव सिमंदर भगवान से प्राप्त दिव्य ज्ञान को हमें नहीं बताते तो हम मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। यही बात आज गुरुदेव पर लागू होती है कि यदि कुंद कुंद आचार्य देव के ग्रंथों का रहस्य उद्घाटन पूज्य गुरुदेव श्री अपनी वाणी के द्वारा नहीं करते तो हम लोग कुंद कुंद आचार्य देव के उन रहस्यों को कैसे समझ पाते, है ना। ये समझना महाभाग्य का अवसर है। अपना तो 71 कलश चल रहा है और 71 कलश में बहुत जोरदार बात शुरू के दिन का प्रवचन जो गुरुदेव श्री का चला था, मैंने 3 दिन पहले का, है ना, उसमें गुरुदेव ने बहुत मार्मिक बात कही थी और बहुत ही सुंदर कलश है। अपने को अपनी अस्थि की मस्ती जगा दे ऐसा कलश है ये। ख्याल में है कैसा कलश है? अस्थि की मस्ती आ जावे कि ऐसा मैं, एक बार ऐसे अपने स्वभाव की अद्भुतता और आश्चर्यता तो लगे कि ऐसा मेरा स्वभाव, कैसा स्वभाव। तो अभी अब हम गुरुदेव श्री के प्रवचन से थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 263 पेज है, ये कारण कार्य नियम में निकाल लीजिए। गुरुदेव श्री ने यहां से शुरू किया कि जे कुबुद्धियों ने तेमज सुबुद्धियों ने प्रथम तीज शुद्धता छे, प्रथम तीज शुद्धता छे। और जब ये वाक्य पढ़ा तो गुरुदेव के मुख से पहला वाक्य निकला प्रवचन में, आ हा हा। लोग कहते हैं कि आहा हा में क्या है, मैंने कहा तुम गुरुदेव जैसा आहा ही करके दिखा दो, और तो छोड़ो, गुरुदेव जैसा आहा करके तो दिखाओ। नकल बहुत लोग करते हैं गुरुदेव के आहा की, लेकिन गुरुदेव जैसा आहा करने की सामर्थ्य किसी में देखने का हमें तो नहीं आई भैया। उनके आहा में भी मर्म है। दो जगह आहा करते हैं गुरुदेव, एक जब वो आह्लाद में आते हैं तब उनके मुंह से आहा निकलता है, और एक जब उन्हें किसी बात पर खेद होता है अपन लोगों की परिणति को देख करके कि ऐसा स्वभाव और ऐसे स्वभाव की तीव्र विराधना तू करता है, आहा क्या जाइस बापू। तो वो अपने लिए खेद आता है तब भी गुरुदेव के मुंह से आहा निकलता है। तो गुरुदेव के आहा का मर्म भी गुरुदेव से ही समझना पड़ेगा, और की बात तो छोड़ो। तो यहां पे कहते हैं हा 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 कुबुद्धि ने। अब कुबुद्धि का अर्थ क्या, बिल्कुल गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे अपन, इसमें से बहुत बहुत सारे अंश उनके अपन पढ़ेंगे। कुबुद्धि, कुबुद्धि ने, अने इसका अर्थ क्या हुआ, मिथ्या दृष्टि ने, है ना, अने सम्यक दृष्टि ने। सुबुद्धि का मतलब सम्यक दृष्टि ने। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि क्या है, आत्मा तो सम्य दृष्टि भी नहीं और आत्मा तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं। अरे आत्मा को आत्मा जानने वाला वो सम्य दृष्टि, और आत्मा को अनात्मा जानने वाला मैंने आत्मा की पहचान आत्मा से करे उसका नाम सम्य दृष्टि, और आत्मा की पहचान संयोग से करे, आत्मा की पहचान एक समय के परिणाम से करे। अरे और तो और, सम्यक दर्शन से आत्मा की पहचान करे वो भी कुबुद्धि है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, मिथ्या दर्शन की बात नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन से आत्मा की पहचान करे, एक समय के सम्यक दर्शन के परिणाम से अपने को सम्यक दृष्टि मान लेवे, आत्मा सम्यक दृष्टि है, कहते मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि न आत्मा सम्य दृष्टि है और न आत्मा मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को आत्मा मानने वाले परिणाम का नाम सम्य दर्शन, और आत्मा को आत्मा नहीं मानने वाले परिणाम का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा कैसा है कि आत्मा तो जैसा मिथ्या दर्शन के काल में शुद्ध और पवित्र है वैसा ही सम्यक दर्शन के काल में शुद्ध और पवित्र है। सम्यक मिथ्या दर्शन के काल में आत्मा ने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा और सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं हुआ। अरे और तो और, संसार की घनघोर दशा में आत्मा ने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा और मोक्ष की पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हुई इसलिए आत्मा पवित्र हुआ, कहते ऐसा भी नहीं है। आत्मा तो नित्य निगोद से लगाकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत देखो 26 नंबर की गाथा नियम सार की, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ये लिया है ना। ये देखो गुरुदेव जो बात बोलते हैं उसके पीछे कितना आगम का बल होता है गुरुदेव के पास। उनकी अनुभूति का बल तो होता ही है, लेकिन अनुभूति के बल के साथ साथ आगम का भी कितना बल होता है ना। और जिस बात का आगम गुरुदेव को नहीं मिलता हो, गुरुदेव की यह पद्धति रही कि वो ये बोल देंगे कि भाई बात ख्याल में आती है परंतु आगम नहीं मिलता, ये भी गुरुदेव बोल देते हैं। ज्ञान गोष्ठी में एक प्रश्न है, प्रश्न किया किसी ने शिष्य ने कि साहब सम्यक दृष्टि को 6 महीने में आत्मा की अनुभूति होना अनिवार्य है ना। तो जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आते हैं और 9 महीने तक माता के गर्भ में रहते हैं तब उनको आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती है। अब गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया पढ़ना ज्ञान गोष्ठी में। गुरुदेव ने कहा कि बात ख्याल में आती है पर आगम प्रमाण कुछ मिलता नहीं है, ये कहकर के गुरुदेव ने मतलब कितना उनको आगम का भी कितना जबरदस्त पक्ष था। देखो यहां पे 26 नंबर की गाथा में इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से लिया है, अपन थोड़ा सा उसको देखते हैं, अपन अपना विषय को पुष्ट करने की बात है वो। यहां चर्चा काय की चली तो कि 26 नंबर की गाथा में परमाणु की चर्चा चली। किसकी चर्चा चली? परमाणु। परमाणु की चर्चा क्या चली कि परमाणु कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। क्या बहुत सिंपल सी बात है ना कि परमाणु अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। अब वो परमाणु अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने जीव का दृष्टांत बनाया, जीव का दृष्टांत बनाया और पुद्गल का सिद्धांत समझाना है। अब उसमें कितनी गजब की बात लिखी देखो 26 नंबर की गाथा की टीका कि जैम सहज परम पारनामिक भावनी विवक्षानो आश्रय करनारा सहज निश्चय नयनी अपेक्षाए। बहुत बढ़िया। जैम, जैम माने जिस प्रकार, तो जैम जहां से शुरू होता है ना, जैम माने जिस प्रकार, तेम उसी प्रकार, वहां पे बात खत्म होती है। तो जिस प्रकार सहज परम पारिणामिक भाव, ये सहज परम पारिणामिक भाव क्या है कि जो आत्मा का सहज स्वभाव है। देखो पारिणामिक भाव तो 6 द्रव्यों के पास है, 6 द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो 6 द्रव्यों के 6 द्रव्यों से विशेष बताने के लिए आत्मा के भाव को कहा परम पारिणामिक भाव। कैसा परम पारिणामिक भाव? तो उन्होंने कहा सहज परम पारिणामिक भाव। सहज माने कैसा परम पारिणामिक भाव कि जो परम पारिणामिक भाव को किसी की अपेक्षा नहीं है, जो अत्यंत निरपेक्ष है। अरे शरीर की, वाणी की, कर्म की, निमित्त की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन जिसे अपने ही पर्याय भावों की भी कोई अपेक्षा नहीं है। उदय भाव की अपेक्षा नहीं, उपशम भाव की अपेक्षा नहीं, क्षोभसम भाव की अपेक्षा नहीं, अरे छायिक भाव की भी जिस भाव को अपेक्षा नहीं है, जो छायिक भाव से भी निरपेक्ष है, सहज स्वभाव है, परम पारिणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय करने वाला सहज निश्चय नय। उस नय का नाम भी क्या दिया? सहज निश्चय ने। सहज भाव को विषय करने वाला नय वो सहज निश्चय ने है। और उस नय की विवक नय नी अपेक्षाए नित्य अने अनित्य निगोद थी मांडी ने। क्या मतलब? नित्य निगोद और अनित्य निगोद, ये क्या नित्य अनित्य निगोद का क्या मतलब है कि जहां से अनंत जीव आज तक कभी निकले नहीं उसका नाम है नित्य निगोद। और यह भी ध्यान देना कि ऐसे अनंत जीव निगोद में हैं जो अनंत काल में कभी निकलेंगे भी नहीं। आप सोचो जरा कि अपन लोग त्रस्पर्याय मनुष्यपना दीर्घ आयु जैन कुल और पंचम काल में गुरुदेव श्री जैसे महान संत का सद्भाग्य अपने को मिला, उनका अपने को सहयोग मिला, सुयोग मिला, अपन कितने भाग्यशाली हैं। नहीं तो नित्य निगोद। और निगोद से निकल करके वापस निगोद में जावे, उसका नाम है इतर निगोद, उसे बोलते हैं अनित्य निगोद। तो नित्य निगोद, नित्य और अनित्य निगोद थी मांडी ने, सिद्ध क्षेत्र पर्यंत रहेला जीवोनु। कहां तक के जीव ले लिए? अब बोलो कौन सा जीव छोड़ दिया, बताओ जरा। नित्य निगोद से लेकर अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत, माने सिद्धालय में जो आज सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उन सिद्ध परमात्मा तक की बात ले ली है कि नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत जीवों नु निज स्वरूप थी। अच्युतपणो कहवामा आव्यु, बाकी तो फिर सिद्धांत आ जाएगा परमाणु का। अच्युतपणो, नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो नित्य निगोद और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीव वो परम पारिणामिक स्वभाव है। प्रत्येक जीव का स्वभाव कैसा है कि परम पारिणामिक स्वभाव है, कि परम पारिणामिक स्वभाव उस एक समय की निगोद की पर्याय में तो आता ही नहीं है। एक समय की निगोद की पर्याय में वो नहीं आता, तो कोई कहे कि कोई बात नहीं, निगोद की पर्याय तो बहुत मलिन है और उस मलिन पर्याय में वो सिद्ध वो परमात्मा परम पारिणामिक भाव रूप स्वभाव वो उस एक समय की निगोद पर्याय में क्यों आवे, कि वो तो ठीक है, अरे वो एक समय की सिद्ध पर्याय में भी नहीं आता। क्या मतलब कि वो तो अपने परम पारिणामिक भाव से च्युत होता ही नहीं, पर्याय में औदयिक भाव की घनघोर औदयिक परिणाम चले, निगोद से ज्यादा औदयिक भाव औदयिक परिणाम किसी पर्याय में हो नहीं सकते। ऐसे औदयिक परिणाम चले पर्याय में, ऐसे औदयिक भाव हो तो भी परम पारिणामिक स्वभाव अपने परम पारिणामिक स्वरूप से च्युत नहीं होता, एक बात। और पर्याय में परम शुद्ध छायिक भाव की परिणति चले, सिद्ध दशा से ज्यादा छायिक भाव की उत्कृष्ट परिणति दूसरी नहीं हो सकती, छायिक भाव की परिणति का वहां एंड हो जाता है। कि छायिक भाव की शुद्ध परिणति चले तो भी वो परम पारिणामिक भाव उस छायिक भाव की एक समय की शुद्ध परिणति में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से कभी च्युत होता ही नहीं। अगर वो छायिक भाव की शुद्ध परिणति में आ जाए तो उसे औदयिक भाव की शुद्ध अशुद्ध परिणति में भी जाना पड़ेगा। वो औदयिक भाव हो चाहे छायिक भाव हो, औपशमिक भाव हो चाहे क्षोभसम भाव हो, कोई सा भाव हो, कि परम पारिणामिक भाव कभी भी अपने स्वरूप से च्युत होकर इन पर्याय भावों के साथ एक मेक पने को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या कि पर्याय में कैसी ही अशुद्धि हो अथवा पर्याय में कैसी ही शुद्धता हो, दो बातें गई। क्या कहा? दो बातें कौन कौन सी? कि पर्याय में कैसी ही अशुद्धि हो अथवा पर्याय में कैसी ही शुद्धता हो, परम पारिणामिक भाव उन शुद्ध प्रगट अशुद्धता और प्रगट शुद्धता से अत्यंत निरपेक्ष रहता हुआ नित्य शुद्ध रहता है, नित्य पवित्र रहता है, सहज शुद्ध रहता है, सहज पवित्र रहता है। और इसी को आचार्य देव ने कहा कि पहले से ही शुद्धता है। तो पहले से शुद्धता माने कैसी शुद्धता? कि देखो निगोद की अशुद्धता एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुई, तो निगोद की शुद्ध अशुद्धता जो उत्पन्न हुई ना, कि निगोद की अशुद्धता के काल में भी स्वभाव तो पहले से शुद्ध है। क्यों भैया? अगर स्वभाव शुद्ध नहीं होता, अभी सुनना जरा, बहुत मार्मिक बिंदु है, कि यदि स्वभाव शुद्ध नहीं होता तो ये निगोद की दशा अशुद्ध है, ये आप कहते किसके आधार पर? नहीं आया पॉइंट समझ में? आया क्या कहा? क्या कहा कि ये निगोद की अशुद्धता, कि ये अशुद्धता है, तो ये अशुद्धता को हमने जाना कब? कि कोई शुद्धता का थर्मामीटर, कोई शुद्धता का मापक अपने पास होना चाहिए, और जिससे अनमेल ये अशुद्धता है, जिससे अनमेल ये दशा है, तभी तो हमने कहा कि निगोद ये अशुद्धता, निगोद की अशुद्धता माने कुबुद्धि, कुबुद्धि माने निगोद की अशुद्धता को ले बोले, माने उसी समय शुद्धता का कोई मापक हमारे पास होना चाहिए। ये कपड़ा गंदा है, हमने किस आधार पे कहा कि कपड़ा गंदा है? क्यों? क्योंकि कपड़े का शुद्ध स्वरूप हमारे ख्याल में है, तब हम कहते हैं कि कपड़ा गंदा है, धो दो इसको जरा, आ गया। और इसी तरह प्रकट शुद्धता, कि भाई ठीक है ये शुद्धता है, लेकिन ये शुद्धता तो नई हुई है ना, ये तो अभी प्रकट हुई है ना, ये पहले तो नहीं थी ना, तो ये जो नई शुद्धता प्रकट हुई है और जो एक समय के बाद नियम से अभाव को प्राप्त होगी, क्या मैं वो शुद्धता वाला हूं कि जो अगले समय मरने वाली शुद्धता है? भले क्षायिक भाव की पर्याय हो, अरे भले केवल ज्ञान की पर्याय हो, अरे भले सिद्ध दशा की पर्याय हो, वैसी की वैसी हो सकती है, लेकिन वह की वह नहीं हो सकती। क्या कहा? वैसी की वैसी, केवल ज्ञान की पर्याय हुई, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी पर्याय होगी, लेकिन वह की वह नहीं है। और मेरी शुद्धता जो पहले से विद्यमान है वो कैसी है? कि वह वही की वही है, कि वह की वह, वैसी की वैसी में हम नहीं समझे। क्या मतलब है इसका? कि देखो, अपने घर में एक बालक है और उस बालक को अपने बहुत ब्रांडेड खिलौना, 10-20 हजार का बढ़िया खिलौना ला करके अपन ने दिया, ठीक है। अब घर में एक दूसरा बच्चा भी है, वो उदंड है, उसने उस बालक का खिलौना हाथ से लिया, मेरे को दे, मेरे को दे, उसने नहीं दिया, नहीं दिया तो खींच के जोर से पटक दिया जमीन पर, अब वो खिलौना टूट गया। अब वो बालक रोता है, अपना खिलौना टूटा हुआ देख करके बालक रोता है, तो पिताजी कहते हैं, बेटा रोता किस बात को है? अरे अपने घर में कौन सी कमी है? तेरे को इसी ब्रांड का, इसी कलर का, इसी आकार प्रकार का ऐसा ही खिलौना मैं अभी ला करके देता हूं। क्या कहा? इसी ब्रांड का, इसी कलर का और इसी प्रकार का नाप माप का ऐसा का ऐसा खिलौना ला करके अभी देता हूं। और बालक जिद में आ गया, मुझे ऐसा का ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यह का यही चाहिए। आगे समझ में? आगे समझ में कि यह का यह। अब वो पिताजी कितना भी प्रयत्न करें, है ना, कि यह का यह खिलौना तो ला नहीं सकते, ऐसा का ऐसा ला सकते हैं लेकिन वह का वह नहीं ला सकते। आ गया? पर्याय की शुद्धता वैसी की वैसी शुद्धता है, लेकिन वह की वह शुद्धता नहीं है। और मेरी शुद्धता वैसी की वैसी नहीं, वह की वह शुद्धता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सुबुद्धि को भी पहले से शुद्धता है। माने कुबुद्धि की, कुबुद्धि की तो ख्याल में आ ही जाता है अपने को कि भाई कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि, माने अशुद्धता, कि अशुद्धता के सामने तो हमने त्रिकाली शुद्धता को रख दिया, वहां तो ठीक है कि भाई वो अशुद्ध है, ये शुद्ध है, लेकिन शुद्धता के सामने शुद्धता कैसे रखेंगे कि जो पहले से ही विद्यमान है, कि देखो ये तो नई प्रकट हुई है और ये तो अगले समय में विदा लेगी, तुम इस शुद्धता को केवल ज्ञान की पर्याय बहुत अच्छी है, सिद्ध दशा की पर्याय बहुत अच्छी है, सम्यक दर्शन की पर्याय बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी पर्याय को हम बहुत लंबे काल तक अपने साथ रखना चाहते हैं,
तो वह कहती है कि वैसी की वैसी आएगी लेकिन वह की वह नहीं आएगी, वो तो नीलांजना के नृत्य जैसी पर्याय है ना। क्या कैसी नीलांजना के नृत्य जैसी, कि नीलांजना का नृत्य करते करते नीलांजना की आयु पूरी हो गई है ना। इंद्र ने तत्काल उसी प्रकार की वैसी ही रंग रूप वाली, वैसी कद काठी वाली, वैसी सकल सूरत वाली दूसरी नीलांजना आदिनाथ भगवान की सभा में, राजा ऋषभ देव की सभा में उपस्थित कर दी। अरे स्थूल दृष्टि अज्ञानी जीव भले ही इस बात का पता नहीं लगा सके कि यह वह नीलांजना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि आदिनाथ की नजर से ख्याल में आ गया कि वो बात छुपी नहीं रह सकी और उन्होंने उसी क्षण जान लिया यह वह नहीं है और वैराग्य हो गया। इसी तरह पर्याय के स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी, एक समय के पर्याय के पर्याय का जीवन जानता है, वो जानता है कि वैसी की वैसी पर्याय हो सकती है लेकिन पर्याय कभी भी वह की वह नहीं हो सकती। इसलिए पर्याय के जीवन को एक क्षण का जानने वाला ज्ञानी कभी भी पर्याय में व्यामोहित नहीं होता, आदिनाथ की तरह पर्याय से विरागी होकर के वर्तता है। और अज्ञानी स्थूल दृष्टि वो वैसी की वैसी में अंतर नहीं कर पाता कि ये वैसी की वैसी है वह की वह नहीं है, और वो दूसरी नीलांजना को भी पहली नीलांजना ही समझ करके उसी नृत्य के राग रंग में मग्न रहता है। इसी तरह अज्ञानी पर्याय की धारा में, पर्याय की परिणति से अपने को भी उसी रूप मानता हुआ उस पर्याय के नर्तन में ही नृत्य करता रहता है और मिथ्यात्व का नाच नाचा करता है। ये समझ लेना, मिथ्यात्व का नाच नाचता है वो, उसे पता ही नहीं पड़ता कि कब पर्याय चली गई कब पर्याय नहीं आ गई, जो पर्याय आई उसमें ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं। अरे मलिन से मलिन पर्याय में तो अपने को, अज्ञानी को तो मलिन ही पर्याय होती है, तो जो जो भी पर्याय आई उन पर्यायों में अपने रूप माना उसने अपने को, लेकिन मैं इन पर्यायों के पार, इन सुबुद्धि और कुबुद्धि की परिणतियों के पार, जिसमें पहले से ही शुद्धता है, जो पहले से ही पवित्र है, जो अनादि अनंत पवित्र है, जो नित्य पवित्र है, जो परमपारिणामिक भाव रूप पवित्र है, जिसकी पवित्रता के लिए पवित्रता के परिणमन की भी आवश्यकता नहीं, यानी पवित्रता के परिणमन से जो पवित्र नहीं हुआ लेकिन जो पवित्र है ऐसा स्वीकार करने से पवित्र परिणमन हुआ, ऐसे पवित्र स्वभाव पर अज्ञानी की नजर नहीं जाती। और अगर उस पवित्र स्वभाव पर नजर चला जाए तो वो अज्ञानी नहीं कहलाता। ये यहां पे कह रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं सुबुद्धि को, मिथ्या दृष्टि को और सम्य दृष्टि को। आहा, प्रथम तीज भगवान शुद्ध ज छे। क्या कह रहे हैं, प्रथम से ही भगवान, भगवान कहते तो अपनी नजर कहां जाती, सिमंदर भगवान, महावीर भगवान, हमारी नजर वहां जाती है। अरे भगवान कहते ही नजर जानी चाहिए यहां, मैं भगवान हूं। और अकेला शुद्ध नहीं कह रहे हैं, शुद्ध जो छे, शुद्ध ही है, अशुद्धता तेरे स्वरूप में आई नहीं कभी। क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई अशुद्धता परद्रव्य के मिलाप से आती है और दो द्रव्यों का मिलाप कभी होता नहीं। ये तो आज गुरुदेव के प्रवचन में बहुत जोरदार तरीके से आया था, तीसरी नंबर की गाथाओं को कितनी बार गुरुदेव ने आज याद किया था, बोलो जरा। जैन शासन का प्राण है ये, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, अज्ञानी मिलावट की कल्पना से करके अज्ञान खड़ा करता है। लेकिन जिस समय अज्ञानी मिलावट की कल्पना करता है उस समय भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। अरे प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही शुद्ध है। पंचास्तिक आय जो आपके यहां चल रहा है प्रवचन में, उसमें ये बात आएगी या आ गई होगी कि स्कंद में रहा हुआ प्रत्येक परमाणु, भले ही स्कंद में रहता है लेकिन उसमें रहा हुआ प्रत्येक परमाणु कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। भले ही स्कंद में रह रहा है लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ता। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता। जब उनकी जाति बिरादरी एक है, दोनों की पुद्गल पुद्गल जाति है, जब एक जाति के दो परमाणु कभी भी मिलकर के एक नहीं होते, तो जिनकी जाति में अंतर है, अरे भाई साहब हम तो बड़े दुखी हैं। तो ये नक्की करो कि दुख लक्षण किसका है। आत्मा का लक्षण दुख नहीं है, है ना? आत्मा का लक्षण दुख नहीं है, आत्मा का लक्षण चैतन्य है। दुख किसका लक्षण है? का आश्रव दुख कार घनेरे। अरे दुख तो आश्रव का लक्षण है। तो हमने माना कि मैं दुखी हूं, यानी हमने अपने को आत्मा नहीं माना। और हमने अपने को क्या माना? कि हमने अपने को आश्रव माना। आश्रव माना इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने अपने अभिप्राय में आत्मा की हत्या की। समझ में आया? अपने को दुखी मानने वाला आत्मघाती महापापी है, क्योंकि आत्मा दुखी नहीं हो सकता, और जो दुखी होता है वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा चैतन्य लक्षण वाला है, चैतन्य लक्षण में दुख का अभाव है, और आश्रव दुख लक्षण वाला है। उस दुख लक्षण आश्रव में चैतन्य का अभाव है। जिसमें चैतन्य का अभाव, हमने उसे चैतन्य माना। हम तो दुखी हैं, हम तो विकारी हैं, हम तो भिकारी हैं। क्या हुआ ये? विकारी हैं कि भिकारी हैं? कि देखो अपन ने क्या माना कि एक समय का विकार, विकार परिणाम, राग परिणाम, द्वेष परिणाम, ये बंध का लक्षण है। समय सार की 294 नंबर की गाथा, ये बंध का लक्षण है कि तेरा लक्षण चैतन्य है। अरे लक्षण भेद से तो भिन्नता समझ ले, आचार्य कहते हैं, है ना? हमने क्या माना? राग के बंधन से अपने को रागी मान लिया, है ना? यहां गुरुदेव श्री फरमा रहे कि भगवान शुद्ध ही है, भगवान शुद्ध ही है, यानी अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं, पामर हुआ ही नहीं। पामरता की कल्पना तो की, लेकिन पामरता कभी स्वभाव में नहीं आई। मैं पामर नहीं, मैं प्रभु हूं। बोलो कौन बताए ये बात अपने को? सारी दुनिया आत्मा की पामरता के गीत गाती है। अरे भैया अभी तो बहुत दशा खराब है। अरे दशा खराब है ना, हम कहां मना कर रहे? दशा खराब है रो, मैं तो दशा नहीं हूं ना। और जहां ये स्वीकार किया कि हम कहते अरे साहब हमारी तो दशा बहुत खराब है, कि तुम्हारी दशा खराब है तो तुम क्यों टेंशन में आते हो? दशा खराब है ना, तुम तो खराब नहीं हुए। तुम ये स्वीकार करो कि दशा खराब है। अरे दशा खराब है इस बात का ज्ञान भी, भगवान शुद्ध है ये पता पड़ेगा तब पता चलेगा। नहीं तो अज्ञानी बोलता तो है दशा खराब है और मानता है अपने में ही खराबी। भाषा में बोलेगा पर्याय में तो अशुद्धता है, भाषा में तो ये बोलता है कि पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन अभिप्राय में आत्मा को अशुद्ध मानता है। क्यों? क्योंकि सच में पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान भी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता के ज्ञान के बिना नहीं होता। किसके साथ तुलना करके तुम ये कहते हो कि पर्याय में अशुद्धता है? पर्याय में अशुद्धता है ये कहते ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि द्रव्य में शुद्धता है, द्रव्य शुद्ध स्वरूप है। देखो भैया ये आत्मा तो ऐसा गजब का तत्व है कि इसकी कोई नास्ती करने जाए ना, क्या कहा, आत्मा की कोई नास्ती करने जाए तो भी इसकी अस्थि सिद्ध हो जाती है। कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आत्मा बिल्कुल नहीं है आत्मा, लेकिन आत्मा नहीं है ये विकल्प किसने किया? बोलो जरा नक्की करो, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं, किसने देखा आत्मा? कि जिसने ये देखा कि किसने देखा आत्मा, वो आत्मा है। शिव जी के आत्मसिद्धि में एक बहुत अच्छा छंद आता है, आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते आप, शंका नो करनार खुद अचरज एह अमाप। मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता, तो मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता तो ये किसे नहीं दिखाई देता? ये किसकी सत्ता में तूने ये जाना
कि मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा दिखाई नहीं देने का ज्ञान तुझे किसकी सत्ता में हुआ ये बता। जिसकी सत्ता में तुझे ये ज्ञान हुआ कि वही तो आत्मा है भैया, अब इससे ज्यादा आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि और क्या होगी। यहां आचार्य कहते हैं, यहां गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे भगवान शुद्ध ही है ना। ये भगवान शब्द सुनकर के अपने को जरा उछाला नहीं आता? अपने को ऐसा लगता है कि भगवान भी जैसे कोई अपना नाम हो ना, रामू श्यामू कामू जो भी है ना, ऐसा एक भगवान भी अपना नाम हो गया। अरे भगवान कहते ही विश्व का सर्वोपरि तत्व, जिससे ऊंचा विश्व में कोई नहीं है। क्या कहा? विश्व का सर्वोपरि तत्व, सर्व तत्विक सार। समय नियम सार की 38 नंबर की गाथा में, गाथा के बाद एक 54 नंबर का कलश आया जिसमें कहा कि जो सर्व तत्वों में एक सार है। सर्व तत्वों में क्या लेना? कि भाई जीव से लगा करके मोक्ष तत्व, ये सर्व तत्व है ना, इन सर्व तत्वों में सारभूत तत्व एक है, और वो कौन है? कि वो मैं हूं। अरे मेरी अपेक्षा से मोक्ष तत्व भी सार नहीं है, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। सोगानी जी का बोल, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। क्यों? क्योंकि सिद्ध एक समय की पर्याय है, और मैं ऐसी ऐसी अनंत अनंत पर्यायों को पी करके बैठा हूं। बोलो, ये कह रहे हैं भगवान शब्द बोला ना गुरुदेव ने, भगवान शुद्ध ही है। ये भगवान शब्द में से इतना अपने को अपनी आत्मा के प्रति आह्लाद आना चाहिए। भगवान के प्रति जितना बहुमान अपने को आता है उतना नहीं, लेकिन उससे अनंत गुणा बहुमान अपने भगवान के प्रति आना चाहिए। उससे अनंत गुणा बहुमान अपने भगवान के प्रति आवे, तब इन भगवान के प्रति आने वाले बहुमान को व्यवहार बहुमान कहा जाएगा। बाकी व्यवहाराभास। समझना भैया क्या कह रहे हैं यहां पे? फिर देखो, मिथ्या दृष्टि तो एक समय नी पर्याय ऊपर छे। ऊपर छे एटले स्वभाव में प्रवेश नथी। हैं? ऊपर ऊपर तरे छे। गुरुदेव बोलते ना, पानी के ऊपर तेल की बिंदु, टीपा, टीपा बोलते ना, पानी नो टीपू, जैम तेल नो टीपू, जैम पानी में प्रवेश करतो नथी, ऊपर ऊपर तरे छे, तेम मिथ्या दर्शन नी पर्याय ऊपर ऊपर तरे छे। टीपा टीपा, क्या गजब बात है, पर्याय ऊपर ऊपर छे। क्या कितनी गजब की बात लगी कि मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय ऊपर है। और देखो नक्की करो ना, अभी अपना वीर शासन जयंती का दिन निकला था, निकला था वीर शासन जयंती का दिन का मतलब क्या होता है? उस दिन गौतम गणधर भगवान महावीर के समोसरण में आए, दिव्य ध्वनि खिरी है ना। अब आप नक्की करो कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही, और 66 दिन तक इंद्र को भी विकल्प नहीं आया जो भी घटनाक्रम हुआ। अब वो इंद्र गया कि भैया वो एक गौतम ब्राह्मण है, 500 शिष्यों का गुरु है और बहुत अभिमानी है, लेकिन गणधर होने लायक वही है। इंद्र गए और एक छोटा सा सवाल पूछा, वृद्ध का वेश बना करके गए, छोटा सा सवाल पूछा। वो सवाल ऐसा है वास्तव में तो, कि अपनी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 5-7 प्रश्न है और कुछ नहीं था उसमें। कितने द्रव्य हैं, कितने पंचास्तिक आए हैं, तत्व कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, अपनी पाठशाला में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा उत्तर दे देवे, उसको पता नहीं। अब देखना, इधर मिथ्या दर्शन, अकेला मिथ्या दर्शन नहीं, गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान, गृहित मिथ्या चारित्र, ठीक है, और 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं। शर्त यह हुई कि यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर, अगर उसने ब्राह्मण ने पूछा, गौतम ने पूछा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा तो क्या करेगा, बोल मेरे लिए क्या करेगा तू? तो कह क्या करूंगा, क्या मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा? ठीक है, मेरे 500 से 501 हो जाएंगे, खुश। लेकिन साहब मेरी भी एक बात सुन लो। क्या? इंद्र ने कहा कि यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके
तो फिर आपको मेरे गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा, वो भी मंजूर है ना। हो गया। अब जब वो प्रश्न पढ़ा और इंद्र वो गौतम ने सोचा कि भैया ये क्या चक्कर है, लेकिन अब 500 शिष्यों के सामने कैसे बोले कि मुझे नहीं आता, है ना, अभिमान। उन्होंने कहा तुमसे क्या चर्चा करूं, चल तेरे गुरु के पास चलते हैं। इंद्र ने कहा कि आया इसलिए था मैं तो मैं तो आया इसलिए था, ये तो बहाना था। अब जैसे ही गुरु के पास जाने लगे, देखो परिणामों की, अब क्योंकि गणधर पद होने योग्य है ना उनको, थोड़ी देर बाद अभी क्या कमाल होने वाला है, तो परिणामों की धारा कैसी पलटने लगी। अरे जब मैं इस ब्राह्मण के एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, इसके गुरु तो बहुत ज्ञानी होंगे, मैं उनके प्रश्न का क्या उत्तर दूंगा। और ऐसा करते 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 परिणामों में पलटा 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 आता गया, और जैसे ही समोसरण के पास पहुंचा और भगवान के समोसरण में मानसतंभ देखा और भगवान का देवीय समोसरण का वैभव देखा, एकदम उसका मान गल गया। अरे मैं कौन से 500 शिष्यों के ऊपर फूला फूला फिरता हूं, हैं कि इनके समोसरण में तो बहुत क्या गजब, कितना है ना। और एकदम उसका अभिमान गल गया और भगवान के समोसरण में गया इंद्रभूति, और जैसे ही भगवान की मुद्रा देखी, अपना चैतन्य स्वरूप दिख गया। अपना चैतन्य स्वरूप दिख करके उसी समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव, मुनि पना, मन पर्य ज्ञान की प्राप्ति और अंतर मुहूर्त में द्वाद सांग के रचने की सामर्थ्य प्रकट हो गई, भगवान की दिव्य ध्वनि खेलने लगी। अब विचार करो जरा, थोड़ी देर पहले जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व का पता नहीं, और थोड़ी देर बाद वो एक द्वाद सांग की रचना की सामर्थ्य धारण करता है, इस पर्याय का क्या भरोसा। अभी हम जिसको मिथ्या दृष्टि कहकर के जिसका उपहास उड़ा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि कहकर के सर्वज्ञ का विरोधी कहकर के जिन शासन का विरोधी कहकर के जिसका हम उपहास उड़ा रहे हैं, जिसे हम हे दृष्टि से देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमें क्या पता कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी हो जाएगा ना? ये पर्याय का स्वरूप है, ये पर्याय पलटनशील है। अब उस जो पलटनशील है, जो निरंतर बदलती है, हम उसकी बात का क्या, उस पर्याय का क्या भरोसा करें। अरे भरोसे के लायक अगर कोई है तो वो है जो कभी अपनी बात से नहीं बदलता, जो कभी अपनी शुद्धता को, जो कभी अपनी चैतन्यता को नहीं छोड़ता, जो सदा काल जैसा है वैसा ही रहता है ना। ऐसा जो तत्व है वो वास्तव में विश्वास के लायक है। प्रति समय बदलने वाली पर्याय कभी भी विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने यहां पे कहा कि भाई मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय ऊपर है, और वस्तु तो सिद्ध समान आखी परमात्म दशा छे। वस्तु कैसी है कि वस्तु तो परमात्म स्वरूप है। ये बात है, बहुत गंभीर तत्व है, बहुत गंभीर। इस पर और अपन चर्चा करेंगे।
બોલો પાવાપુત્રી શમશેણી બિરાજમાન વર્તમાન તુલસીના ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો જય હો। महावीर जी न हमारे गुरुवर, अंतिम आप तीर्थंकर है। न हमारे गुरुवर,
अंतिम आप तीर्थंकर,
आपके ही अनुसरण से सच्चा जीवन सफल है।
आपके है अनुसरण से सच्चा जीवन सफल है।
आप आपकी ये ध्यान मुद्रा स्वाध्याय का ही प्रेरक
आपकी ये ध्यान मुद्रा स्वाध्याय का ही प्रेरक है
महावीर जिन हमारे गुरुवर प्रथम अंतिम आप तीर्थंकर
महावीर जिन हमारे गुरुवर अंतिम आप तीर्थंकर है
काम क्रोध निवारण काजे मूल्यवान आप वचन
काम क्रोध निवारण काजे मूल्यवान आप वचन है
निमिता दिन दृष्टि मिटा के समर्थ उपादान सोपा है
निमिता दिन दृष्टि मिटा के समर्थ उपादान सोपा है
पुण्य पाप को बंध समझा के
उपाधेय निर्जरा कहाँ पुण्य पाप को बंध समझा के उपाधेय निर्जरा कहाँ
वेद ज्ञान कहा जो अपने एक ही मुक्ति का कारण है
वेद ज्ञान कहा जो अपने एक ही मुक्ति का कारण है
हर आत्मा को अकर्ता कह के छुट्टी विभाव की दिखा दी है
हर आत्मा को अकर्ता कह के
छुट्टी विभाव की दिखा दी है
हर आत्मा के गुण दिखा कर निज की पहुँच बताई है
हर आत्मा के गुण दिखा कर निज की पहुँच बताई है
हर आत्मा को निजानंद कह के शाश्वत आनंद द्वार खोले
हर आत्मा को निजानंद कह के शाश्वत आनंद द्वार खोले है
हर आत्मा को भगवान कह के तमन्ना पुरुषार्थ की दी है
हर आत्मा को भगवान कह के तमन्ना पुरुषार्थ की दी है
नटखट पर्यायों से संसार दिखा के शुद्ध पर्यायों का मोक्ष दिया
नटखट पर्यायों से संसार दिखा के शुद्ध पर्यायों का मोक्ष दिया
आनंद तो भरा हर आत्मा में कहा मिले इसलिए जरूर
आनंद तो भरा हर आत्मा में कहा मिले इसलिए जरूर
मुनिवरों का जीवन कह के धर्म धोरी बताया है
मुनिवरों का जीवन कह के धर्म धोरी बताया है
ध्यान धरे जो आपके मार्ग में मुक्ति उसका निश्चित
ध्यान धरे जो आपके मार्ग में मुक्ति उसका निश्चित है
आप आपका तो अनंत उपकार हमें सनातन धर्म दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें सनातन धर्म दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें कान गुरु दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें कान गुरु दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें भगवती मात दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें भगवती मात दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें स्वर्णपुरी तीर्थ दिया।
आपका तो अनंत उपकार हमें स्वर्णपुरी तीर्थ दिया।
महावीर जी हमारे गुरुवर अंतिम आप तीर्थंकर है।
महावीर जी न हमारे गुरुवर अंतिम आप तीर्थंकर है।
आचार्य जी सिद्ध साई प्राप्त पुष्पादि मार परम स्वामी जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। हाल विदेह क्षेत्र में विद्यमान समोसमा स्वभायमान सिमंदराजी अजित वीरपरन विश्वविरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अर्ज जिनमंदिर में जयवंत पणि बिराजित श्री बाहुबली मनीन्द्र भगवान नो जय हो। दिव्य ध्वनि सारभूत नित्य बोधक परमागम समय साधि समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। भारत क्षेत्र में सद्धर्म वृद्धि करनार भगवान श्री कुंदकुंद आचार्य देवनो जय हो। लाखों करोड़ भक्तों तारणहार अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरु देवनो जय हो। कहान गुरु महिमा प्रकाशक प्रसन्नमूर्ति धन्योतार पूज्य भगवती मातनो जय हो। अनंत करुणा कृपा निधान परम कृपाणु देवनो जय हो। महावीर भगवान निर्वाण कल्याण महोत्सव नो जय हो। श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके।